Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, सक्सेस की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। जो किसी एक व्यक्ति के लिए सक्सेस है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए एवरेज सक्सेस भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सक्सेस की सही परिभाषा हमारे खुद के मन से होकर जाती है। अगर आपने ठान लिया कि आपकी सक्सेस निश्चित है, तो मानिएगा ज़रूर वो निश्चित होगा ही होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी, जो कि 30 इयर्स से साइकैट्री को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम टू आवर शो भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक्स अ लॉट।
हमने पिछले एपिसोड में बातचीत की कि किस तरह से यूथ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उन्हें एक बड़ा रूप देकर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि एक पॉइंट आता है ज़िंदगी का जब शादी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे समय पर भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिन्हें हमें डील करना होता है। हमने कुछ यूथ से उनके बारे में बातचीत की है, आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं।
दोस्तों, मैरिड लाइफ में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आते हैं आपस में, जिन्हें सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक दूसरे को समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आज हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो उनसे किस तरह से डील करते हैं।
अकॉर्डिंग टू मी, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते। आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड गर्ल, बट थिंग इज दैट कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सो दैट इज़ डिपेंड ऑन यू। सेम थिंग, अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप कभी एडजस्ट नहीं कर सकते। इफ़ यू आर पॉजिटिव अबाउट योर एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली यू विल एडजस्ट एंड यू विल फेस द कॉन्फ्लिक्ट जो आपकी मैरिड लाइफ में आते। अगर आप किसी साथ कॉपरेट ही नहीं करना चाहते, उसे समझना ही नहीं चाहते, तो आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो। सो यू हैव टू एडजस्ट अगर आप एक अच्छी मैरिड लाइफ बिताना चाहते हो।
मैरिड लाइफ एक अपनी लाइफ का एक पार्ट है, तो लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कुछ कन्फ्लिक्ट्स आते हैं कुछ लोगों में, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, उनको हैंडल करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जिससे कि सारी प्रॉब्लम जो हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है।
मैरिज जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। जब हम अपने पेरेंट्स को छोड़ के दूसरी फैमिली में आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। समटाइम हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अगर हम वो कॉम्प्रोमाइज़ और उस फैमिली के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, तो हमारी लाइफ जो है बहुत एक सक्सेसफुल लाइफ और बहुत कामली चल सकती है।
एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, और मतलब जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ ढलना ज़रूरी है, और उनके मतलब जो कस्टमर या फिर जो रिलीजियस वगैरह, मतलब वो अपनाने पड़ते हैं, और मतलब मैरिड लाइफ अच्छी लाइफ होती है।
डॉक्टर साहब, जितना मैं समझ पाई हूँ ज़िंदगी को, मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन हम किस तरह से उसका सामना करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। एज अ यूथ, भले कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना आ जाए, अगर हम खुद अपने आप में सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से, तो हम वो सेटिस्फैक्शन अपने थ्रू दूसरों को भी स्प्रेड करते हैं
जी।
और वही हमारे रिश्तों में भी फ्लो करती है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि खुद को एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना सक्षम करने की ज़रूरत है एक बेटर रिलेशनशिप के लिए। खुद को पहल अगर करनी है तो वो कहाँ से करनी है।
देखिए, अगर ज़िंदगी को गेम ऑफ क्रिकेट भी देखें, तो बॉल्स तो हर तरह के आएंगे,
बिल्कुल,
लेकिन अगर आपको हर स्ट्रोक खेलना आता है और आप फ्लो में हैं और आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं हैं, और हर समय जब आप वहाँ जाते हैं तो सेंचुरी मारने का नहीं सोचते हैं लेकिन अच्छा खेलने का सोचते हैं, तो हर बॉल को अच्छी तरह से खेल पाएंगे।
बिल्कुल।
ज़िंदगी में भी क्या बॉल्स आपकी तरफ रोज़ आनी है, इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं है। हम जो चल रहा है उसको फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं।
करेक्ट।
वहाँ पे वो प्रोजेक्शन होगी या नहीं होगी ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो हुआ उसको मैं कितना अच्छा डील करता हूँ वो मेरे ऊपर है।
करेक्ट।
और इसीलिए जो आपने बात की कि अपने आप को सक्षम करना कितना ज़रूरी है, सिर्फ हमारे सक्षम होने से ही इश्यूज़ को हम सॉल्व कर पाएंगे।
करेक्ट।
ये डिसीजन हम कभी नहीं ले सकते कि दूसरे उस समय मेरे साथ कितने होंगे, सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम आए, ज़्यादा ना आए, सिर्फ इतनी बड़ा ही चीज़ मेरे सामने आए, इस तरह की ही आए, क्योंकि मैं सिर्फ उसी चीज़ को जानता हूँ। कुछ चीज़ें कई बार हमें ज़्यादा बड़ी इसलिए दिखती हैं क्योंकि हमने जो अपने जीवन में देखा या दूसरों से सुना या किसी चीज़ के बारे में अगर पहले नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं या हमारी परसेप्शन है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीवन में, तो उसकी वजह से उस क्षेत्र में अगर कोई चीज़ वैसी नहीं होती जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं क्योंकि हम उसे लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट करते हैं। मान लीजिए किसी के घर में बचपन में झगड़े हों माँ बाप के बीच में, और हम आमतौर पर ये तरह की सिचुएशंस को आजकल घरों में देखते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए आपस में संबंध का हर समय सही होना ज़्यादा मायने रखता है।
बिल्कुल,
क्योंकि नहीं लगता है कि अगर वो नहीं हुआ तो बाद में जाके वही होगा जो उनके पेरेंट्स के साथ हुआ। लेकिन अगर किसी ने अपने घर में देखा कि फादर एक जॉब को होल्ड नहीं कर पाया या बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी वो अच्छी जॉब नहीं कर पाया किसी भी कारण से, तो उसके लिए काम से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी।
करेक्ट।
या अगर उसे लगता है कि उसे जीवन में बहुत ज़्यादा कमाना है, बहुत ऊपर जाना है, और आसपास के लोगों को अगर वो महसूस करता है कि सक्सेस को सिर्फ उसी पैरामीटर पर नापा गया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम ढूंढना, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना या बहुत ज़्यादा नाम शोहरत होना इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
करेक्ट।
हमें देखना ये है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो बाकी चीज़ों के साथ कितनी बैलेंस में चल रही है। क्योंकि अगर यूनिडायमेंशनल होगा और बाकी चीज़ें बहुत कम होंगी तो ना सिर्फ जीवन में कमी होगी लेकिन उन चीज़ों से जो हमें सपोर्ट मिल सकती है वो नहीं होगी। इसीलिए जो आप बात शुरू में कर रही थी रिश्तों की, आजकल एक और चीज़ देखी गई है कि जो एज ऑफ मैरिज है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
करेक्ट।
पहले लीगल एज तो अभी 18 और 21 है, लड़कियों के लिए 18 और मेल्स के लिए 21, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लड़कियां भी ज़्यादा पढ़ना चाहती हैं, किसी तरह से अपने पैरों पे पहले खड़ा होना चाहती हैं और फिर इस चीज़ का सोचती हैं। लड़के भी जब तक स्टेबलाइज नहीं होते तो घर वाले भी सोचते हैं और सही सोचते हैं। वो एज वेरिएबल है लेकिन आमतौर पर पहले के मुकाबले वो एज और पीछे चली गई है।
करेक्ट।
25, 26, 27 कई बार 30 तक। वहाँ पर वैसे तो लोग थोड़े से मैच्योर भी हो जाते हैं लेकिन कई बार इनसिक्योरिटीज़ भी आनी शुरू हो जाती हैं। परिवारों के अंदर भी इनसिक्योरिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं कि अभी तो कुछ हुआ नहीं
जी।
कोई वर नहीं मिला या बहू मिलने का कोई चांस नहीं है, आगे जाके क्या होगा, सेटल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कई बार उसी से रिलेटेड मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। हमने कई बार देखा है कि अरेंज्ड मैरिजेस में आजकल अगर कोई व्यक्ति 2-3 लोगों से मिलता है और किसी भी कारण से अगर ना आती है तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आनी शुरू हो जाती है, एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन होनी शुरू हो जाती है। किसी ने किसी कारण से ऐसा महसूस किया कि आपके साथ वो पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकता है, नहीं बिताना चाहता, बहुत अच्छा है कि पहले पता लग गया।
या दिस इज़ सो ट्रू, क्योंकि एक बार शादी हो गई उसके बाद तो कुछ बदलेगा नहीं, कितना भी चाहेंगे तो वापस पीछे नहीं जा सकते, तो इट्स गुड दैट पहले ही डिफरेंसेस सॉर्ट आउट होकर के आप एक सही बंदे से शादी के लिए आगे बढ़े।
और उसमें एक और बात है कि जो सही एक समय में लगता है वो समय के साथ साथ भी बदलता है, तो वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रिश्तों में होना बहुत ज़रूरी हो जाता
जी।
है जो कि कई बार रिजिडिटी में चली जाती है कि हमें उसी तरह का व्यक्ति चाहिए, इतना पे पैकेज चाहिए, इस तरह का घर चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए वगैरह वगैरह। ज़िंदगी को बहुत स्टैटिक मान लिया जाता है और ज़िंदगी बहुत डायनेमिक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से जन्म पत्रियाँ मिलाने की बजाय संस्कारों को मिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। वैल्यू सिस्टम्स को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब्स आती जाती रहती हैं, पैसा आता जाता रहता है, किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी ज़िंदगी वो एक स्तर पे ही हो और नीचे ना आए या ऊपर ना जाए। और अगर ऐसा होता भी है तो भी दूसरा व्यक्ति आपके साथ कितना चल रहा है, कितना एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ज़रूरी यह है कि दो व्यक्ति साथ में ज़िंदगी को एक ही नज़रिए से देखकर चल सकें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहेगा। इसी समय में एक और चीज़ हो रही होती है, कॉम्पिटिशन विद वर्क। अनफॉर्चुनेटली जो आप काम करते हैं और जो आप पे लेते हैं वो आपके रिश्तों में भी रिफ्लेक्ट करता है, खासतौर पे मैरिज में।
बिल्कुल।
आज के समय में पहला क्वेश्चन यही होता है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या पोजीशन है, क्या करियर है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी वजह से भी कई बार प्रेशर आज के समय में लोगों पर पड़ता जा रहा है कि हर व्यक्ति एक और देखिए ये बिगनिंग ऑफ योर करियर है। बिगनिंग ऑफ करियर में एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि आप उतना अच्छा करेंगे जो आगे जाके करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ व्हाट द ट्रेंड इज़, क्योंकि कहीं ना कहीं सोचा जाता है कि अगर आपकी बिगनिंग हाई है तो आप आगे भी
उससे ऊपर जाएंगे।
बिल्कुल। इस वजह से कई बार लोग गलत डिसीजंस लेते हैं काम के बारे में, जो चीज़ नहीं भी पसंद करते उसकी तरफ जाते हैं। वी सी अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि आज किस काम की ज़्यादा डिमांड है वो मैं करूं, लेकिन आपके मन की क्या डिमांड है वो करने की बात नहीं होती। और उसी कारण से कई बार लोग अपने आप को मिसफिट महसूस करते हैं या जाने के बाद वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाते।
करेक्ट।
और उसकी वजह से उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में और कमी आती है।
बिल्कुल।
अ लॉट ऑफ टाइम्स जो स्किल्स हैं किसी भी काम को करने की, बाहरी स्किल्स कहें अभी तो सॉफ्ट स्किल्स की बाद में बात आती है
जी,
वो जो बाहरी स्किल्स हैं वो पूरी तरह से कई बार नहीं ली होती। पढ़ लिए लेकिन उसको प्रैक्टिकल में कैसे जीवन में लगाना है उसके बारे में नॉलेज कम होती है।
करेक्ट।
एंड नाउ डेज बिकॉज ऑफ दैट लोग जॉब्स जल्दी छोड़ने की कोशिश भी करते हैं कि अगर एक जगह उनको पसंद नहीं आया, ये भूल जाते हैं कि अगर नहीं पसंद आई कोई चीज़ तो शायद उन्होंने भी उतना अच्छा डिलीवर नहीं किया। अगर आप अच्छा काम डिलीवर कर रहे हैं तो आपको कोई खोना नहीं चाहेगा।
जब भी कोई सिचुएशन आती है, कोई भी तरह की सर्कमस्टेंसेस जॉब लेवल पे आती हैं, अगर हम उन चीज़ों का सामना नहीं करेंगे और पीछे भागकर दूसरे जॉब को ढूंढने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने CV पर भी एक रॉन्ग इम्प्रेशन डालते हैं
जी।
क्योंकि फ्रीक्वेंट जॉब चेंज की वजह से लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये थोड़े दिन तक ही हमारे साथ रहेंगे, बाद में भरोसा नहीं है तो इनको बेटर है हम नहीं रखें। तो पर एज अ यूथ ये जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें ज़्यादा पे पैकेज मिलना चाहिए, ये सही है या गलत है ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सिली लगता है सुनने में ये, लेकिन फैक्ट ऑफ लाइफ तो यही है कि हमें अभी अभी उनकी शादी भी हुई है तो घर में भी पैसों की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है ऐसे में, तो उनकी सोच जो है वो गलत है तो क्यों गलत है?
गलत नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या प्रैक्टिकल है ये देखने की ज़रूरत होती है।
ओके, ट्रू।
बाकी जहाँ तक ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें पंछियों की तरह होती हैं, उड़ती रहती हैं और ऊपर उड़ना चाहती हैं, वहाँ पे ये देखना पड़ता है कि जिस तरह का हम काम कर रहे हैं उस तरह की एवरेज क्या है। मान लीजिए किसी का पे पैकेज 50,000 का है और वो कहते हैं नहीं साहब मुझे 75,000 मिलना चाहिए क्योंकि मेरी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो आप अपनी ज़रूरतों को कम करें या आप कुछ ऐसी स्किल्स को अपनाएं जिससे आपकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वर्क वो बढ़ जाए।
मैं समझ रही हूँ।
अदरवाइज व्हाई शुड समबडी वांट टू पार्ट मोर?
एग्जैक्टली।
प्लस कई बार एक और चीज़ होती है कि हम ये करने की बजाय और तरह के कामों में पार्ट टाइम वर्क्स या कई तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पॉसिबिलिटी है तो कुछ गलत तरह के काम, साइड के काम या कुछ आउटराइट करप्शंस उनमें चले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में इन चीज़ों को किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं समझा जाता। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने आप से और ऑर्गेनाइजेशन से सच नहीं बोल रहे हैं, एक आडंबर के रूप में चल रहे हैं और वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। अगर आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो पहले तो आंकलन करें कि क्यों ज़्यादा हैं एवरेज से, और कोशिश करें कि वो ज़रूरतें कम रहें। बहुत सारे खर्चे फ्रैंकली कई बार हम देखते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और वो खर्चे वैसे हैं जिनके बिना बहुत आसानी से काम चलाया जा सकता है। दे आर मोर फॉर एंटरटेनमेंट, दे आर मोर फॉर टेक्नोलॉजी, न्यू फोन, न्यू लैपटॉप, मे बी अ ट्रिप, ट्रैवल। आजकल के समय में यूथ को ये भी बहुत है कि एक महीने में एक बार कहीं ना कहीं बाहर जाना ज़रूरी है या बाहर खाना ज़रूरी है, उसी से वो अपने आप को पूरक समझते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा ड्रेन करती हैं, और जो नॉर्मल ज़रूरतें हैं उससे कई ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कई बार, तो स्पेशली अगर ट्रैवल बहुत फ्रीक्वेंटली है या एक्स्ट्रावेगेंट ढंग से ट्रैवल है, या जिस तरह की जगहों पे आप ठहरते हैं वो बहुत महंगी हैं, तो उन सब चीज़ों को अपनी जेब के हिसाब से चल के देखना चाहिए। अदरवाइज उस छोटे से क्षणिक सुख के लिए, जो कि शायद आपकी फैमिली को पता ही नहीं हो, उन्हें पता ही नहीं है कि आप प्रेशर में ये खर्चे कर रहे हैं, लेकिन आप कई बार अपने आप को दिखाने के लिए या दोस्तों को दिखाने के लिए या फेसबुक पे कुछ फोटोज लगाने के लिए ही वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो वो जो आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रेशर्स लाते हैं उनको सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कई बार तनाव का कारण बन जाते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो पहलू होते हैं ज़िंदगी के, या तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि इस पड़ाव पर जब इंसान आता है तो एक्सट्रीम्स में ज़्यादा जीने लगता है जब तक बच्चे नहीं होते, क्योंकि दो ही व्यक्ति एक साथ होते हैं उससे पहले तो वो आज़ाद थे, लेकिन जब साथ में आते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस भी आने लगती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है एक बेटर रिलेशनशिप के लिए, जैसे एक दूसरे से बातें शेयर करना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस तरह से आपकी बातचीत, कैसा आपका दिन बीता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स है। लेकिन ऐसे में अगर कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट यूथ है जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो उनको गलत समझा जाता है। ऐसे में इंट्रोवर्ट उनके नेचर को सामने वाले व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है या इंट्रोवर्टनेस से उन्हें बाहर आने की ज़रूरत है ताकि एक बेटर रिलेशनशिप दोनों कायम कर सके।
देखिए, जो पर्सनालिटी टाइप्स हैं, एंड इंट्रोवर्टेडनेस एक पर्सनालिटी टाइप है, वैसे खुद से रिलेशनशिप के लिए थोड़ी बहुत इंट्रोवर्टेडनेस होना ज़रूरी है, तभी आप बाहरी चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा समेट पाएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा ही सिमटे रहते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, तो वो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सोशल फोबिया, सोशल एंग्जाइटी, जिसमें कि आप ज़्यादा लोगों के सामने बोल नहीं पाते या व्यक्त नहीं कर पाते या स्टेज पे खड़ा होकर कुछ भी कहना तो मुश्किल हो जाती है, जहाँ पे दूसरे लोग हैं उस जगह से आप कटते हैं, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है
जी,
क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में बाधा बनता।
बिल्कुल,
कई बार ये होता है कि लोग काम पे तो किसी ना किसी तरह अपने आप को फोर्स करके, क्योंकि वो डिलीवर करना है तो फोर्स करके जितना हो सकता है वो काम चलाते हैं, लेकिन शाम तक वो फोर्स जो है वो उनकी ख़त्म हो जाती है, और उस वजह से जो निजी रिश्ते हैं उनमें वो उसे नहीं ले जा पाते, और वहाँ पे जो उनका पार्टनर है या कई बार घर के और जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते कि बाहर तो ठीक ठाक बात कर रहे थे लेकिन घर में आके एकदम
कुछ नहीं बोलते। बिल्कुल, तो इसे कई बार रॉन्ग भी लिया जाता है कि ये हमें एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। रियलिटी ये है कि उनकी वो ट्रेट ही वैसी है कि वो वैसे ही है, तो इसमें कुछ गलती उनकी हो रही है या उन्हें बेहतर बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है जिससे वो खुद भी बेटर फील करेंगे और रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होती जाएंगी, चाहे वो ऑफिशियल एरिया में हो चाहे वो घर के क्षेत्र में हो।
वहाँ पे एक खूबसूरत मिक्स होने की ज़रूरत है।
ओके।
और उस मिक्स में वो व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा शाई है या जैसा आपने कहा वर्ड यूज़ किया इंट्रोवर्टेड में एक्चुअली उस व्यक्ति को भी कष्ट नहीं होता और दूसरों को भी नहीं कष्ट होता। इंट्रोवर्टेड एक ट्रेट है जिसमें कि आप सही समय पे सही चीज़ बोलते हैं और बाकी समय फालतू चीज़ें नहीं कहते। लेकिन शाइनेस जो है जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ भी आप उस चीज़ को व्यक्त नहीं करते हैं, नहीं कर पाते। तो वो जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ से आपको या दूसरों को परेशानी हो रही हो उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। हाँ, ये भी बात है कि कुछ कल्चर्स हैं जिनमें लोग ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। कहा जाता है कि पंजाबी जो हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन वो एक जनरल बात है। बट अदरवाइज जहाँ पे आपके पार्टनर को या दूसरे घर वालों को ये लगता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल ही स्विच ऑफ हो जाता है, वहाँ पे आपको बदलने की ज़रूरत है। और बाकी लोगों को उस चीज़ में मदद करने की ज़रूरत है। कई बार बड़े प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकती हैं कि जो व्यक्ति अगर बाहर से आया है उसे कुछ समय दें रेस्ट करने का, सारे दिन की जो थकावट है या स्ट्रेसेस किसी रूप में आए हैं उनसे अपने आप को रिलैक्स करने का। और उसके बाद सिर्फ वही बातें जो नकारात्मक हैं, सारा दिन में क्या हुआ, किस बच्चे के साथ प्रॉब्लम हुई, इन लॉज के साथ अगर किसी की प्रॉब्लम चल रही है तो सिर्फ वही बातें करनी शुरू कर दी, घर में क्या टेंशन है, पानी कहाँ से लीक हो रहा है, इन सब चीज़ों के बात में अगर होती है तो वो एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरी प्रॉब्लम में आता है। बाहर तो स्विच ऑफ बॉस के सामने नहीं कर पाता लेकिन यहाँ कर पाता।
बिल्कुल।
तो वहाँ पे अगर हम कुछ सकारात्मक बातों से शुरू करें
जी,
उसे कुछ समय दें, वो चीज़ें जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं उसके बारे में बात करें और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ावा दें अपनी बातों को कहने का। कई बार परिवारों में ये भी देखा गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है बाकी लोग उसे या तो चुप करा देते हैं या मजाक उड़ा देते हैं और उस वजह से और हताश हो जाता है, पीछे चला जाता है। बचपन में कई बार लोगों के साथ इसी तरह के एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं
जी।
और बाद में वो चलते रहते हैं और इसी कारण से उनकी पर्सनालिटी नहीं डेवलप हो पाती। तो वहाँ पे घर वालों का ये ज़रूर ये रोल है क्योंकि ये बात सिर्फ कुछ दिन की नहीं है
जी,
इसने पूरी ज़िंदगी चलना है।
बिल्कुल।
और उसके काम पर भी असर डालना है, उसके दूसरे रिश्तों पर भी असर डालना है। वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर होती है और ख़ास तौर पे जो पार्टनर्स हैं उनमें हमने आजकल ज़्यादा देख रहे हैं कि कई बार शक के बीच जो है वो आ जाते हैं।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल।
और कई बार कोई तीसरा व्यक्ति होता है जो मन में हो रहा होता है कि शायद उस कारण से ये मुझसे नहीं बोलते हैं। वहाँ पे वो चीज़ अगर कुछ है आपके मन में ऐसी या कोई ऐसा बीच चल रहा है तो उसे जल्द से जल्द क्लियर करें। और दूसरे पार्टनर को भी ये कई बार देखने की ज़रूरत होती है कि कई बार कुछ रिश्ते जहाँ पे हम बहुत उन्मुखता से बात कर लेते हैं शायद आपके पार्टनर के लिए वो थ्रेटनिंग सिचुएशन है, खासतौर पे अगर आप उससे उतनी अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे।
करेक्ट।
आज के समय में खासतौर पे इस उम्र में जबकि लोग ऑफिस में ज़्यादा समय बिताते हैं और ऑफिस में दोनों सेक्सेस के लोग काम करते हैं, कई बार इकट्ठे जाके पार्टीज भी करते हैं और घर में जो दूसरा व्यक्ति है वो उस चीज़ का हिस्सा नहीं है, वो वेट कर रहा है, तो वहाँ पे कई बार ज़्यादा शक के बीच या कई बार रात रात तक मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स होती हैं, कई बार कुछ SMS जो हैं वो भी शेयर होते हैं
जी।
तो उस तरह की चीज़ें और ख़ास तौर पे अगर वो पर्सनल तरह के कमेंट्स हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो ज़रूर एक तरह से आपके रिश्ते में बाधक बनते हैं और फिर कई बार उसकी वजह से काम पर भी मुश्किल आती है क्योंकि एक पार्टनर कहता है कि आपको वहाँ से हटने की ज़रूरत है, आप किसी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उन स्ट्रेसेस को जितना हो सके कम से कम रखें, क्योंकि वो ना आपको अच्छी तरह से काम करने देगा ना घर पे जीने।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज का जो पूरा एपिसोड रहा है वो नॉलेज से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं हमने ऐसे ऐसे पहलुओं को छुआ जिसमें हमने ये सारांश निकाला कि अगर हमें एक बेहतर ज़िंदगी, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल क्रिएट करना है अपने लिए, अपने ऑफिस के लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो कहीं ना कहीं दोनों को उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है और बैलेंस बिगड़े नहीं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो।
प्लेजर ऑलवेज।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने कई सारी बातों को जाना। कहीं ना कहीं हमने ऐसी पहलुओं को छुआ जहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमने ये जाना कि अगर हमें एक बेहतर ज़िंदगी जीनी है जिसके अंदर में ना ज़्यादा टकराव हो, ना ज़्यादा शक हो, ना ज़्यादा कंपैरिजन हो, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेवारी खुद के हाथ में लें, दूसरों को अपनी ज़िंदगी कंट्रोल करने मत दें और सही समय पर सही डिसीजन लेना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये आज हमने जाना। थैंक यू सो मच। ओम शांति।